नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Art Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड ए. पैटरसन और जॉन एल. हेनेसी की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन LISP 5 एडिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पाठ्यपुस्तक है। इसका लक्ष्य केवल यह बताना नहीं है कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि प्रोग्राम के निर्देश प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट तंत्र के भीतर वास्तव में कैसे काम करते हैं। पुस्तक RISC-V एक खुली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को मुख्य उदाहरण बनाती है। इसके माध्यम से पाठक उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर और डिजिटल हार्डवेयर के बीच के संबंध को क्रमबद्ध ढंग से समझता है। विषय की शुरुआत प्रदर्शन मापन और मशीन निर्देशों से होती है, फिर अंकगणितीय परिपथ, डेटा पाथ, कंट्रोल पाइपलाइन, कैश, वर्चुअल मेमोरी, समानांतर प्रोसेसिंग और एक्सेप्शन तक पहुंचती है। यह पुस्तक प्रोग्रामिंग, बाइनरी, अंकगणित और बुनियादी डिजिटल लॉजिक से परिचित उन्नत विद्यार्थियों, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर्स और सिस्टम इंजीनियरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसका शैक्षिक ढांचा मूल सिद्धांत को निर्देश परिपथ और प्रदर्शन के ठोस निर्णयों से जोड़ता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट के जरिए सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक का संबंध। पुस्तक का केंद्रीय प्रवेश बिंदु RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। इंस्ट्रक्शन सेट वह अनुबंध है जिसे कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेसर से अपेक्षित मानते हैं। इसमें निर्देशों के प्रारूप, रजिस्टरों के उपयोग, डेटा के प्रकार, मेमोरी तक पहुंच और नियंत्रण प्रवाह के नियम शामिल होते हैं। पुस्तक इस स्तर को इसलिए महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि हार्डवेयर का आंतरिक कार्यान्वयन बदल सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अनुकूल बने रहने के लिए इस अनुबंध का पालन आवश्यक रहता है। RISC-V का सरल, नियमित और खुला डिजाइन इस शिक्षा के लिए उपयोगी उदाहरण है। सीमित और स्पष्ट निर्देश प्रारूपों से यह देखना आसान होता है कि कोई असेंबली निर्देश डेटा कहां से लेता है, कौन सी गणना करता है और परिणाम कहां रखता है। लोड और स्टोर निर्देशों के माध्यम से रजिस्टर और मेमोरी की अलग भूमिकाएं भी स्पष्ट होती है। पुस्तक केवल असेंबली भाषा का परिचय देकर नहीं रुकती, वह दिखाती है कि निर्देशों की डिजाइन आगे चलकर डेटा पाथ की जटिलता, कंट्रोल संकेतों, पाइपलाइन के जोखिमों और कंपाइलर के विकल्पों को प्रभावित करती है। इसलिए RISC-V यहाँ किसी एक प्रोसेसर का विवरण नहीं, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीमा समझने का व्यवस्थित माध्यम है। दूसरा, डेटा पाथ। कंट्रोल और अंकगणित से प्रोसेसर के निष्पादन चक्र का निर्माण। एक मशीन निर्देश उपयोगी तभी बनता है जब प्रोसेसर उसे प्राप्त, समझ और निष्पादित कर सके। पुस्तक इस प्रक्रिया को डेटा पाथ और कंट्रोल के संयुक्त डिजाइन के रूप में समझाती है। डेटा पाथ में प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल ALU, डेटा मेमोरी और परिणाम वापस लिखने के मार्ग जैसे घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट निर्देश के प्रकार के आधार पर तय करती है कि कौन सा मार्ग सक्रिय होगा, ALU कौन सा ऑपरेशन करेगा, मेमोरी पढ़ी जाएगी या लिखी जाएगी और किस रजिस्टर में परिणाम जाएगा। यह विभाजन महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल घटकों की सूची से प्रोसेसर समझ में नहीं आता। असली प्रश्न यह है कि किसी लोड, जोड़, ब्रांच या स्टोर निर्देश के समय सही डेटा सही क्रम में कैसे प्रवाहित होता है। पुस्तक पहले सरल सिंगल साइकिल और फिर मल्टी साइकिल संगठन के जरिए लागत, समय और जटिलता के अंतर दिखाती है। सिंगल साइकिल डिजाइन अवधारणा में सीधा है, पर हर निर्देश के लिए लंबे समय का चक्र मांग सकता है। मल्टी साइकिल डिजाइन हार्डवेयर संसाधनों को अलग चरणों में दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नियंत्रण अधिक विस्तृत हो जाता है। इसी क्रम में ALU की जोड़, घटाव, गुणा, भाग और फ्लोटिंग पॉइंट गणना से जुड़ी मूल बातें बताई जाती हैं। पाठक समझता है कि अंकगणितीय प्रतिनिधित्व और हार्डवेयर लागत सॉफ्टवेयर के संख्यात्मक व्यवहार तथा मशीन की गति दोनों को आकार देते हैं। तीसरा, पाइपलाइनिंग। हैज़र्ड और डायनामिक शेड्यूलिंग के प्रदर्शन समझौते। पाइपलाइनिंग का मूल विचार यह है कि एक निर्देश के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना अगले निर्देश के अलग चरण पर काम शुरू किया जाए। यदि निर्देश प्राप्त करना, डिकोड करना, निष्पादन, मेमोरी पहुंच और परिणाम लिखना अलग चरण है, तो कई निर्देश एक ही समय में अलग चरणों में मौजूद हो सकते हैं। इससे प्रत्येक निर्देश का व्यक्तिगत विलंब अनिवार्य रूप से कम नहीं होता, लेकिन तैयार निर्देशों की दर बढ़ सकती है। पुस्तक इस लाभ को सावधानी से सीमित करती है क्योंकि वास्तविक प्रोसेसर में हैज़र्ड उत्पन्न होते हैं। डेटा हैज़र्ड तब आता है जब नया निर्देश ऐसे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हो जो अभी रजिस्टर में लिखा नहीं गया है। फॉरवर्डिंग से परिणाम को बीच के चरण से सीधे आवश्यक स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि कुछ स्थितियों में स्टॉल जरूरी होता है। कंट्रोल हैज़र्ड ब्रांच निर्देशों से पैदा होता है क्योंकि अगला सही निर्देश शाखा के निर्णय पर निर्भर है। इस संदर्भ में ब्रांच निर्णय और अनुमान का प्रदर्शन पर प्रभाव समझ में आता है। पुस्तक इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म और डायनेमिक शेड्यूलिंग तक भी जाती है। जहां हार्डवेयर उपलब्ध निर्देशों को निर्भरता के अनुसार अधिक प्रभावी क्रम में चला सकता है। इसका उद्देश्य केवल तेजी नहीं बल्कि सीमित संसाधनों में उपयोगी काम की दर बढ़ाना है। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि अधिक समानांतरता के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर, जटिल नियंत्रण और ऊर्जा की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए पाइपलाइन डिजाइन गति और सरलता के बीच इंजीनियरिंग निर्णय है। चौथा, कैश लोकेलिटी और वर्चुअल मेमोरी से मेमोरी अंतराल को संभालना। प्रोसेसर की गति और मुख्य मेमोरी की गति के बीच अंतर कंप्यूटर डिजाइन की स्थायी समस्या है। पुस्तक मेमोरी हायरार्की को इस समस्या का व्यावहारिक उत्तर मानती है। छोटे और तेज कैश अपेक्षाकृत बड़ी मुख्य मेमोरी तथा अधिक धीमे स्थायी स्टोरेज के स्तर मिलकर लागत और प्रदर्शन का संतुलन बनाते हैं। इसका आधार लोकेलिटी है। टेम्पोरल लोकेलिटी का अर्थ है कि हाल में इस्तेमाल डेटा या निर्देश फिर उपयोग हो सकता है। स्पेशल लोकेलिटी बताती है कि निकट के पते भी शीघ्र उपयोग में आ सकते हैं। कैश ब्लॉक में डेटा रखने का तर्क इन्हीं प्रवृत्तियों से आता है। पुस्तक कैश हिट, मिस पेनल्टी, ब्लॉक आकार, मैपिंग और रिप्लेसमेंट जैसी अवधारणाओं को प्रदर्शन मापन से जोड़ती है। इस तरह पाठक देखता है कि कैश बड़ा होना हमेशा पर्याप्त उत्तर नहीं है, क्योंकि हिट समय, क्षमता, संघर्ष और ऊर्जा भी मायने रखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इस चर्चा को सुरक्षा और प्रोग्रामिंग सुविधा तक ले जाती है। वर्चुअल पते हर प्रक्रिया को अलग और सतत पता स्थान का आभास देते हैं, जबकि पेजिंग और एड्रेस ट्रांसलेशन वास्तविक भौतिक मेमोरी का प्रबंधन करते हैं। ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर जैसे तंत्र तेज अनुवाद के लिए उपयोगी होते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि मेमोरी डिजाइन केवल डेटा रखने का प्रश्न नहीं बल्कि गति, अलगाव, विश्वसनीयता और ऑपरेटिंग सिस्टम सहयोग का प्रश्न है। अंत में मल्टीकोर इनपुट आउटपुट और एक्सेप्शन में सिस्टम स्तर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साझेदारी पुस्तक प्रोसेसर को अकेले परिपथ के रूप में नहीं देखती बल्कि उसे ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरणों और अनेक प्रोसेसिंग कोरों वाले व्यापक सिस्टम में रखती है। मल्टीकोर प्रोसेसरों में प्रदर्शन बढ़ाने का मार्ग केवल क्लॉक दर बढ़ाना नहीं रहा, स्वतंत्र कार्यों को अलग कोरों पर चलाना उपयोगी हो सकता है, पर साझा मेमोरी नई समस्याएं लाती है। अलग कैशों में एक ही डेटा की प्रतियां होने पर कैश कोहेरेंस आवश्यक होती है ताकि एक कोर द्वारा किया गया परिवर्तन दूसरे कोर के लिए गलत या पुराना ना रहे। समानांतर प्रोग्रामिंग में समकालिकता, संचार और कार्य विभाजन भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हार्डवेयर। इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट की चर्चा बताती है कि उपकरणों को हर समय प्रोसेसर द्वारा जांचना अक्षम होगा। इंटरप्ट उपकरण को आवश्यकता पड़ने पर प्रोसेसर का ध्यान आकर्षित करने देते हैं, जिसके बाद नियंत्रण उचित सेवा रूटीन तक जाता है। एक्सेप्शन भी इसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीमा का हिस्सा है। गलत निर्देश, असंगत मेमोरी पहुंच या अन्य असामान्य स्थितियों में प्रोसेसर को वर्तमान अवस्था सुरक्षित रखकर नियंत्रित ढंग से प्रतिक्रिया करनी होती है। प्रिविलेज स्तर यह विभाजन करते हैं कि कौन सा कोड संवेदनशील मशीन संसाधनों तक पहुंच सकता है। इन विषयों से पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष उभरता है कि तेज कंप्यूटर केवल तेज ALU से नहीं बनता, उसे समन्वय, सुरक्षा, विश्वसनीय नियंत्रण और सॉफ्टवेयर के साथ स्पष्ट अनुबंध चाहिए। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो यह समझना चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम के स्रोत कोड और वास्तविक हार्डवेयर निष्पादन के बीच कौन कौन से स्तर काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के उन्नत विद्यार्थी, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम प्रोग्रामर, डिजिटल डिजाइन सीखने वाले पाठक और RISC-V आधारित प्रणालियों में रुचि रखने वाले इंजीनियर इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। बुनियादी प्रोग्रामिंग, बाइनरी अंकगणित और डिजिटल लॉजिक की पूर्व जानकारी होने पर इसकी व्याख्याएं अधिक सार्थक बनती हैं। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक प्रदर्शन संबंधी दावों को अधिक सटीकता से परख सकता है। वह समझ पाता है कि किसी बदलाव का असर निर्देश संख्या, क्लॉक चक्र, कैश मिस, पाइपलाइन स्टॉल, ऊर्जा उपयोग या समानांतर निष्पादन पर कहां पड़ सकता है। बौद्धिक रूप से पुस्तक अमूर्त परतों के बीच कारण संबंध स्थापित करती है, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट का असर कंट्रोल पर, मेमोरी व्यवस्था का असर सॉफ्टवेयर व्यवहार पर और प्रिविलेज का असर सुरक्षा पर। समान श्रेणी की पुस्तकों की तुलना में इसकी प्रमुख विशेषता RISC-V को शिक्षण के केंद्र में रखना है। खुली आर्किटेक्चर के उदाहरण से पाठक मानक निर्देशों और उनके संभावित कार्यान्वयन के संबंध को अपेक्षाकृत पारदर्शी रूप से देख सकता है। फिर भी पुस्तक केवल RISC-V तक सीमित दृष्टि नहीं देती। पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की, मल्टीकोर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे सिद्धांत अन्य आधुनिक आर्किटेक्चरों को समझने में भी लागू होते हैं। यही इसे केवल असेंबली संदर्भ पुस्तक के बजाय कंप्यूटर डिजाइन की मजबूत आधारभूत पाठ्य पुस्तक बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड ए. पैटरसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।